मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार फ्रेंड्स, मुख्य विषय के तहत हम लोग COP26 के बारे में कुछ बातें करेंगे। आप जानते हैं कि उसका सम्मेलन समाप्त हो गया है, लेकिन आइए पहले कुछ दूसरी घटनाओं को और दूसरे समाचारों को देख लेते हैं। एक समाचार जो रेडियो न्यूज में भी था और बाकायदे आज के अखबारों में भी उसे जगह मिली, हालांकि जगह थोड़ी सी कम मिली है, वो ये है कि अध्यादेश जारी किए हैं राष्ट्रपति जी ने, दो अध्यादेश, और उसमें खासकर जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि हमारे दो ऑर्गेनाइजेशन संस्थान हैं, सीबीआई के बारे में आप जानते हैं, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और ईडी के बारे में जानते हैं, प्रवर्तन निदेशालय जिसे हम कहते हैं। इनके जो हेड होते हैं वो डायरेक्टर होते हैं। देखिए, सीबीआई के हेड तो ज्यादातर आईपीएस ऑफिसर ही मिलते हैं, और जो ईडी है उसके हेड आपको आईएएस ऑफिसर्स मिलते हैं, सीनियर आईएएस ऑफिसर्स होते हैं। इनके जो डायरेक्टर होते हैं, इनका जो कार्यकाल है वो 2 साल का निश्चित होता है। मतलब अगर किसी को बना दिया गया तो 2 साल तक वो अपने पद पर बना रहेगा, ताकि वो अपने जिम्मेदारियों को पूरे दायित्व के साथ बिना किसी दबाव के तटस्थता पूर्वक निभा सकें। अब जो अध्यादेश जारी किया गया है उसमें जो कार्यकाल जो निश्चित है वो तो 2 साल का ही रखा गया है, लेकिन व्यवस्था ये की गई है कि यदि सरकार को लगता है कि इनके कार्यकाल को बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसी स्थितियां आती हैं, जैसे मान लीजिए कोई इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और पता लगा इसी बीच डायरेक्टर का कार्यकाल खत्म हो गया, जरूरत महसूस की जा रही है कि नहीं, इसके इन्वेस्टिगेशन के लिए इनका रहना जरूरी है, या कह लीजिए कि कोई बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं और बहुत योग्य हैं, सरकार को लगता है कि नहीं इनका कार्यकाल बढ़ाया जाना चाहिए, तो अध्यादेश का संबंध इस बात से है कि एक एक साल करके अधिकतम 3 साल के लिए इनका कार्यकाल और बढ़ाया जा सकता है, यानी कि टोटल कार्यकाल 5 वर्ष किया जा सकता है, लेकिन 5 वर्ष पूरा हो जाने के बाद फिर इनके कार्यकाल को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। अभी इस पर ऑर्डिनेंस जारी किया है जो राष्ट्रपति जी करते हैं, और पेपर में ये लिखा हुआ है कि आगे चल करके जब पार्लियामेंट सेशन शुरू होगा तो फिर एक्ट ला करके इसको उसमें संशोधन कर देंगे। तो ये आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि आपके सिलेबस में ये है। फ्रेंड्स, एक भारत को एयर डिफेंस मिसाइल मिली है जिसका नाम है S-400, जो हमें रूस से मिली है। ये बहुत ही शक्तिशाली मिसाइल है, सिस्टम है। आपको जानना बस थोड़ा सा जरूरी इसलिए है कि अमेरिका इसका विरोध कर रहा था कि भारत को ये मिसाइल नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन रूस ने उसकी परवाह नहीं की। और सबसे बड़ी बात तो यह कि रूस तो क्यों परवाह करेगा, भारत ने भी इस बात की परवाह नहीं की कि भैया अमेरिका दबाव डाल रहा है तो चलो मत लो, अमेरिका नाराज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। बकायदे अब वो मिसाइल हमें मिल रही है, और इसकी ताकत यह है कि ये एक साथ 36 एयरक्राफ्ट को मार के गिरा सकता है। और चीन और पाकिस्तान से हमें किस तरह की चुनौतियां मिल रही हैं आप सब देख रहे हैं, जानते हैं, लगातार समाचारों में सुन भी रहे हैं, तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि आपको अपने डिफेंस सिस्टम को, अगर आप इस आर्टिकल को या इस चैप्टर को तैयार कर रहे हैं, तो अपडेट कर लेना चाहिए। एक खबर जो आज के अखबारों में काफ़ी है और वो ये है दोस्तों कि भोपाल जो मध्य प्रदेश की राजधानी है वहां 2 रेलवे स्टेशन है, एक तो भोपाल स्टेशन है और दूसरा हबीबगंज रेलवे स्टेशन है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन, इस रेलवे स्टेशन को कुछ सालों पहले प्राइवेट संस्थान बंसल कंस्ट्रक्शन कंपनी है उनको सौंप दिया गया था। बहुत से रेलवे स्टेशन इस तरह से सौंपे गए हैं कि वो फिर उसको डेवलप करते हैं, और अब ये जो स्टेशन है ये विश्व स्तरीय स्टेशन बनकर तैयार हो गया है, विश्व स्तरीय, और ये हिंदुस्तान का पहला ऐसा रेलवे स्टेशन है। पहली बात, इसका प्रधानमंत्री जी आज उद्घाटन करेंगे। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि अब इस स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति स्टेशन कर दिया गया है। रानी कमलापति सन 1700 के आसपास यहां की शासिका रही हैं, और खासकर बहुत ही मतलब योद्धा और बहुत ही साहसी शासिका रही हैं, उनके नाम पर स्टेशन का नाम अब रखा गया है। देखिए, वैसे सामान्य तौर पर तो आप कह सकते हैं कि बहुत से स्टेशन के नाम बदले गए हैं, तो इसके बारे में ही मैं क्यों बता रहा हूं, क्या मैं भोपाल में रहता हूं इसलिए बता रहा हूं, नहीं, केवल यही कारण नहीं है। इस स्टेशन के नाम में जो बदलाव किया गया है उसे जानना थोड़ा सा इसलिए जरूरी है क्योंकि ये जो स्टेशन है जिसका उद्घाटन आज हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं अपने आप में विश्व स्तरीय स्टेशन बना है। ऐसा स्टेशन भारत में अभी तक नहीं है, तो चूंकि पहला स्टेशन है, विश्व स्तरीय स्टेशन है और नाम में बदलाव किया गया है, तो थोड़ी सी चीजें ज्यादा अंडरलाइन करने के लायक हो जाती हैं, तो बस इसलिए मैंने इस तथ्य की भी चर्चा आपके सामने की है। और आज के ही दिन आप जानते हैं कि जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है पूरे देश में, और भोपाल में तो एक बहुत बड़ा कार्यक्रम इसके लिए आयोजित किया गया है। खैर, वो सब आपके जनरल नॉलेज की बात विषय नहीं है। दोस्तों, एक तथ्य मैं आपके सामने और रखना चाहूँगा, जो हालांकि 2-3 दिन पहले की है, लेकिन आपको जाननी चाहिए कि जो जलवायु रैंकिंग है, एक क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स आता है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसे जर्मन वॉच संस्था जो है वो जारी करती है, वो इंडेक्स जारी किया गया है। 64 कंट्रीज इसमें लिए गए हैं, जिसमें भारत का स्थान 10वां है। तो हम कह सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज के मामले में भारत ठीक ठाक पोजीशन पर है, अगर 10वें स्थान पर है, क्योंकि हमारे पास इतनी पॉपुलेशन है, हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं, उस लिहाज से हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये जो इंडेक्स तैयार किया जाता है, इसके 4 मानक हैं, 4 बिंदु लिए गए हैं। मेरी समझ से इसे भी थोड़ा सा सुन लेना, आपके लिए बेहतर होगा। पहला तो यह कि वो जो पर्टिकुलर कंट्री है वो ग्रीन हाउस गैसों का कितना उत्सर्जन करता है, ग्रीन हाउस गैसेस कितना एमिशन्स है उसका। दूसरा यह है कि वहां जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसके उत्पादन की स्थिति कितनी है। तीसरा पॉइंट है कि वहां एनर्जी का कंज्यूम कितना हो रही है एनर्जी, यानी कि ऊर्जा की खपत कितनी है। और चौथा है कि उस देश की जलवायु नीति कैसी है। इन 4 मानकों पर यह इंडेक्स तैयार किया जाता है। दोस्तों, अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, और वो है COP26। आप जानते हैं कि ग्लासगो में सम्मेलन हुआ और ये सम्मेलन समाप्त हो गया है। इस बीच में हम लोग लगातार इस विषय पर बात करते रहे हैं। देखिए, आप इस पर बहुत से आर्टिकल्स आने शुरू होंगे, एडिटोरियल कमेंट्स आएंगे और आर्टिकल्स भी आएंगे, मैं आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। बस पहली बात मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगा कि जब ढेर सारी चीजें आएंगी तब आपको बहुत कंफ्यूज्ड नहीं होना है। कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जाता है, मान लीजिए COP26 से, तो प्री में तो जो पूछा जाएगा उसमें आपको केवल निशान लगाना है, और मेंस में अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है तो आपको ज्यादा से ज्यादा 250 शब्दों में लिखने होंगे, ज्यादा से ज्यादा 250 शब्द, कम से कम 100 भी हो सकते हैं, औसतन 200 शब्द। अगर आपने बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश की तो मान करके चलिए कि जब आप लिखेंगे तो आपको लगेगा ये 200 शब्द बहुत कम है, और फिर लिखने की जल्दबाजी में हो सकता है कि आप चाहेंगे ना कि सभी बातें आप सामने रख दें ताकि एग्जामिनर इंप्रेस्ड हो, आपको ज्यादा नंबर मिले, और उसमें बिल्कुल घचपच हो जाएगा, जरूरी बातें छूट सकती हैं और फालतू की बातें सामने आ सकती हैं। तो आपको जानना यह है कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस पूरे के पूरे COP26 के, बस अपने आप को आप वहीं तक सीमित रखें, क्योंकि बहुत से डेटा आएंगे, बहुत से डिस्कशंस आएंगे, ये होना चाहिए था, ये नहीं हुआ है, ये अच्छा हुआ, ये खराब हुआ, ये ढेर सारी बातें आएंगी, आपको उनके बहुत ही जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे केवल उन्हें ही नोट करना है। तो देखिए, अब मैं कुछ तथ्य आपके सामने रख रहा हूं ताकि आपको एक गाइडलाइंस मिल सके। पहली बात तो यह है कि एक अच्छी सहमति बनी है, 200 देशों ने इसमें भाग लिया है, और जो प्री इंडस्ट्रियल एज रही है, देखिए जब भी हम 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक सीमित रखने की बात कहते हैं या 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक सीमित रखने की बात, तो ये किसके तुलना में 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम रखना, सीमित रखना है, क्या आज के? नहीं। जब हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो वो 2 भागों में विभाजित है, एक है पूर्व औद्योगिक युग और दूसरा है आफ्टर इंडस्ट्रियल, यानी कि वर्तमान आप कह लीजिए। तो जब हम प्री इंडस्ट्रियल एज की बात करते हैं तो आपको मालूम है कि औद्योगिक क्रांति 1750 के आसपास हुई है, यानी कि 1700 के आसपास इस धरती का तापमान कितना था, आज कितना है, ये है तुलना। तो जो हमारा प्री इंडस्ट्रियल एज में जो टेम्परेचर इस धरती का रहा है उससे अब हमें इस टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं बढ़ने देना है, हम उस एज तक तो नहीं ले जा सकते, क्योंकि इस बीच में जो औद्योगिक विकास हो गए हैं, इतनी गाड़ियां चल रही हैं, दुनिया भर की चीजें हो रही है, तो उससे तो कार्बन उत्सर्जित होंगे ही, ग्रीन हाउस गैसेज उत्सर्जित होंगे ही, और इसी से जो टेम्परेचर है वो बढ़ता है, तो उसको हम रोक तो नहीं सकते, लेकिन हमें लिमिट रखना होगा, और उस पर एग्री हो गए हैं सभी देश कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमें सीमित रखना है, और देशों से कहा गया है कि ठीक है वो आगे चल करके अपना अपना प्लान दें। दूसरा यह है कि जिस पर हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि जो हमारे विकासशील देश हैं या जो गरीब देश हैं उनके सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम है, वो अपने यहाँ कार्बन उत्सर्जन कम कैसे करें। तो उसके लिए भी अब कहा गया है कि जो विकसित देश हैं वो आपस में बातचीत करेंगे और इसके लिए फंड मुहैया कराएंगे। हालांकि ये बात देखिए पहले भी हो चुकी है लेकिन मटेरियलाइज नहीं हो पाई है, कार्य रूप नहीं ले पाई, लेकिन फिर भी कम से कम इस पर एक सहमति तो बनी है। नेट जीरो के बारे में भी असहमति थी। नेट जीरो का अर्थ आप जानते हैं कि कोई देश जितना कार्बन उत्सर्जित करता है उतना ही अवशोषित करने की वो व्यवस्था करे, तो इस पर भी सहमति बनी है। लेकिन नेट जीरो से बात बनेगी नहीं, क्योंकि अगर हम नेट जीरो पर रहे तो जो अभी का तापमान है वो तो बना रह जाएगा, हमें उसे और भी कम करना है, इसलिए 1.5 डिग्री का टारगेट रखा गया है। एक जो बहुत बड़ी बात हुई है इस बीच में कि अमेरिका और चीन, इन दोनों ने क्लाइमेट चेंज के बारे में मिलकर काम करने में सहमति व्यक्त की है कि हम दोनों इस पर मिलकर काम करेंगे, इसके बारे में बाकायदे बातचीत भी करेंगे, मीटिंग भी होगी। क्योंकि आप जानते हैं कि CO2 उत्सर्जित करने के मामले में अमेरिका और चीन पहले दूसरे नंबर पर हैं, दोनों सबसे बड़े देश हैं कार्बन उत्सर्जन के मामले में। अगर ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तो डेफिनेटली इससे काफी बड़ी राहत मिलेगी। यहां तक कि सन 2030 तक कुछ देशों ने, 30 कंट्रीज ने ये सहमति व्यक्त की है कि वो अपने यहां जो वाहनों से कार्बन उत्सर्जित होता है उसे जीरो कर देंगे, यानी कि आप कह लीजिए कि पेट्रोलियम पदार्थों से चलने वाली जो गाड़ियां हैं उसे खत्म कर देंगे। तो 30 देशों ने इसमें सहमति व्यक्त की है। भारत ने सहमति व्यक्त तो नहीं की है लेकिन समर्थन अपना जरूर व्यक्त किया, और आप देख रहे हैं कि भारत में भी इलेक्ट्रिक वाहन और इन सब के लिए काफी कोशिश की जाने लगी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं जो अभी हम लोगों के सामने आए हैं, और आपको जिन पॉइंट्स तक अपने को सीमित रखना है वो केवल आप रखिए कि तापमान बढ़ने ना पाए, और बाकी चीजें तो होती रहेंगी या पढ़ते रहेंगे। तो दोस्तों ये कुछ मुख्य बातें थी आज के मुख्य विषय के बारे में। हाँ, एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि जो अगला COP27 जो सम्मेलन होगा वो काहिरा में होगा, तो बस अपने दिमाग में आप दर्ज कर लीजिए। दोस्तों न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूँ। हमारी जो ऑफलाइन क्लासेज हैं 27 मार्च से 10 अप्रैल के बीच होने वाली हैं, उसके लिए राजकुमारी राठौर जिनका गांव है भाट पचलाना, उज्जैन मध्य प्रदेश से आप हैं, उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। राजकुमारी जी आपका स्वागत है। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूँ, और इन्हीं में से दो दोस्तों के नाम हैं अनिशा वर्मा झारखंड से और उत्कर्ष कश्यप, आप सबका बहुत बहुत आभार। और इसी के साथ ही फ्रेंड्स आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।